वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 15वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन है। जैसे आप सबका स्वागत है, जो भी भागवत प्रेमी जन प्रातःकाल भागवत में सत्संग में पधारते हैं श्री राधा गिरिधारी मंदिर में। वैसे ध्रुव महाराज एक दृष्टि से अर्थार्थी भक्त है, क्योंकि प्रायः इस संसार में जो भक्त होते हैं ना, कुछ भगवान से चाहते हैं कि हमें भगवान से कुछ मिले। और ध्रुव महाराज ने भक्ति शुरू की थी कि मेरे पिताजी का राज मुझे मिले। तो संसार के किसी बहुत पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से ध्रुव महाराज ने भक्ति शुरू की थी। तो उदाहरणतः ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है, लेकिन किसी भी उद्देश्य से भगवान के शरण में आने के बाद ये तो भगवान का काम है कि उसके हृदय को पवित्र कर देता है। तो भगवान का फिर तो हम तो भगवान के शरण में आए, हमारे मन में कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, हम वो लेकर आ गए तो लेकिन जब भगवान के शरण में आ गए तो फिर तो भगवान का कार्य है ना कि वो हमारे लिए जो उचित और अच्छा हो, जो हमारा श्रेयकारी होगा वो करेंगे। तो ध्रुव महाराज का चरित्र एक ऐसे भक्त का चरित्र है जो नासमझ बच्चा है, पांच साल का है, ना समझ है। और उस बच्चे की अभिलाषा एक ही है कि मैं पिताजी के राज का अधिकारी बनूं, क्योंकि बड़ा बेटा हूं मैं। पिताजी के गोद में बैठने का मतलब है पिताजी के मैं राज्य का अधिकारी बनना चाहिए, मुझे मेरा ये जो जो विरासत है ये मुझे मिलनी चाहिए, इसका भाव यही है। लेकिन नहीं मिला तो भगवान के पास चला गया, तो नहीं मिला तो भगवान के पास चला गया, ये द्रु को भक्त बनाता है। संसार में आदमी कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रेस में हो जाता है, समस्याओं में घिर जाता है, तो किसके पास जाना चाहिए? ये द्रु महाराज से सीखना चाहिए कि जाना फिर भी भगवान के पास जाइए। अर्जुन तो रो रहा है ना पहले अध्याय भगवद गीता में, अपना अस्त्र शस्त्र नीचे फेंक दिया है, सारा शरीर कांप रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं कर सकता, लेकिन रो किसके सामने रहा है? भगवान के सामने रो रहा है। तो अर्जुन का भगवान के सामने रोना योग हो गया, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को तो विषाद हुआ, विषाद होने का मतलब है ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट, ऐसी बीमारी जिसका उपचार आप स्वयं नहीं कर सको, दूसरे की सहायता की जरूरत पड़े, उसको विषाद बोलते हैं। जैसे बीमार हो गया कोई आदमी, बीमार हो गया तो अपना इलाज खुद नहीं करेगा, बड़ा बड़ा विषाद है, कहाँ है कि डॉक्टर के पास जाएगा तब ठीक बनेगा, तो इसको विषाद बोलते हैं कि ऐसी समस्या जिसका समाधान आप स्वयं नहीं कर सकते हो, आपको किसी के सहारे की जरूरत है। तो जब किसी के सहारे की जरूरत हमेशा हमको पड़ती है, हर स्थिति में किसी न किसी का सहारा चाहिए, तो भगवान का सहारा क्यों ना ले ले। तो सीखना सिर्फ ये है हमको कि जब भी हम दुनिया के अंदर किसी समस्या में फंस जाते हैं, कोई मुसीबत हमारे पास आ जाती है, कोई कष्ट आता है, तकलीफ आती है, तो हम किसी और का सहारा लेने के बजाय भगवान के चरणों में जाकर बैठे। और जैसे आम हम मुझे तकलीफ है, मैं तो जाके जैसे किसी मेरे से बड़े जिसको जाके बोलता हूँ मेरे को ये समस्या है मेरा समाधान कीजिए, वही जाके भगवान के सामने खड़े हो जाइए और भगवान के सामने खड़े होके उससे बात कीजिए सीधी सी। ऐसा नहीं है कोई आदमी पहले शुद्ध होके फिर भगवान के पास जाएगा, ये बात समझ लीजिए कि हमारे हृदय के ऊपर अनादि काल से कितने ही जन्मों का इच्छाओं का पर्दे चढ़े हुए हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं है उनके बहुत बड़े पर्दे चढ़े हुए हैं, ये हम अपनी तरफ से साफ कर सके ये संभव नहीं है। ये बात एक बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि सफाई हमारे दिल की, हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो जो मल पड़ा है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि का जो अंदर कई जन्मों का कचरा भरा हुआ है, उसको हम अपनी बुद्धि से, अपने अकुल से, अपनी होशियारी से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से नहीं साफ कर सकते। भागवत इस बात का प्रमाण है। भागवत के दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, कौन हृदय की सफाई करेगा? तब वहां लिखा ये है, पहले लिखा है श्रद्धया शृण्वताम, श्रद्धया नित्यम, शृण्वताम सुनना, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, नित्यम रोज, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए? श्रवण क्या करना चाहिए? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, क्या सुनना चाहिए? भगवान स्वयं श्री कृष्ण की बताई हुई कथा, स्वकथा मतलब भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई कथा भगवद गीता, या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया हुआ श्रीमद् भागवतम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, क्या सुनना चाहिए? शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, नित्य भागवत का, भगवद गीता का श्रद्धा पूर्वक उत्साह के साथ श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण कर लेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुन ही लेते हैं, रोज सुन रहे हैं। तो फिर दूसरी लाइन में ब्रह्मा जी कहते हैं, गृणतश्च स्वचेष्टितम, सुनने के बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने का मतलब जो सुना है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और समझ लेने के बाद उसको प्रैक्टिस करके अभ्यास में लाने का बहुत बड़ी जरूरत है। इसको कहते हैं स्वचेष्टितम, चेष्टा करनी पड़ेगी, चेष्टा के बगैर नहीं सुन सकते। सुनने के बाद चेष्टा क्या करनी है? सुनने में कोई चेष्टा है क्या? बोलूं मैं रहा हूं, हाँ व्यवस्था मंदिर वालों ने की है, आपको बैठना है, बैठ के कानों से अपने आप अंदर आवाज जा रहा है, लेकिन ये सुनना नहीं है। हम्बुल आरल रिसेप्शन, हम्बुल आरल रिसेप्शन, प्रभुपद कहते हैं बड़ी निम्रता से इन शब्दों को हृदय में उतरने दीजिए। तो समझने का काम कौन करेगा? कान थोड़ी समझने का काम करता है, समझने का काम तो दिमाग करेगा। जब बुद्धि का उपयोग करेंगे तब जो सुनेंगे उसको समझेंगे, लेकिन समझ भी जाएं, ये सबको जान देते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए नित्य, ये जन्म सफल तब होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे, ये समझ भी जाएं। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जिनको गीता के ऊपर पढ़ाते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं संस्कृत में इंडियन फिलॉसफी, वो समझते तो हैं सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। तो अभ्यास करना बहुत बड़ा परिश्रम है। तो जब दिमाग का इस्तेमाल, कान के इस्तेमाल से सुनेंगे, दिमाग के इस्तेमाल से समझेंगे, लेकिन दिल के इस्तेमाल से जब दिल चाहेगा तब करेंगे, और जब करेंगे तब क्या होगा? तब होगा कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। अति दीर्घ काल नहीं लगेगा, बहुत जल्दी भगवान आके हृदय में बैठ जाएंगे। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। कब? जब नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवत गीता भागवत कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे और समझने के लिए मनन करेंगे, और फिर निध्यासन का मतलब अभ्यास करेंगे, और जब अभ्यास करेंगे तो अनुभव होगा। जानने से ज्ञान होता है, लेकिन अभ्यास से अनुभव होता है। तो अनुभव क्या होगा? कि भगवान हृदय में आके विराजमान। कहां से हृदय में भगवान आएंगे? भगवान के आने का रास्ता क्या है? प्रवेष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के द्वारा आएंगे। भगवान हृदय के अंदर कान के द्वारा आएंगे। कान के द्वारा मतलब सुनने से, श्रोत इक्षिताम, श्रोत का मतलब सुनना, अक्षिता का मतलब आंख। तो भगवान को कहां से देखते हैं? देखने का भगवान का रास्ता कान है, इसलिए दो कान दिए और खुले हुए, कोई उसके ऊपर पर्दा नहीं। आंखें तो रात को बंद हो जाती है, लेकिन कान के बंद करने का कोई दरवाजा नहीं है, खुला हर वक्त। मंत्रों में भगवान को खड़ी हुई प्रतिमा क्यों खड़ी करते हैं हम? भगवान का जो श्री विग्रह खड़ा क्यों खड़ा करते हैं? नॉर्थ इंडिया में विशेष रूप से आपको खड़े भगवान मिलेंगे, साउथ इंडिया में सोया हुआ भगवान मिलेगा, आराम करता है वो। दिन मंदु जी गए घूमने, भगवान यहाँ आराम कर रहा है, हम खेलने वाले भगवान की पूजा रही है, वृंदावन में भगवान खेलता है। कि भगवान को आराम करना होता है तो रंगनाथ में जाके सो जाते हैं, जब भगवान को क्रीड़ा करने का मन करता है तो वृंदावन चले आते हैं, जब भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, बहुत माल खाते हैं छप्पन भोग, और जब कुछ धंधा करना होता है तो तिरुपति जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ये भगवान के चार स्थानों पर इससे घूमते रहते हैं या? सोने के लिए रंगनाथ में बेफिक्र होकर सोए हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, ये सागर पे सोए हुए हैं जैसे। लेकिन जब क्रीड़ा करनी है, लोगों का मन लुभाना है अपनी ओर, तो जो आदमी खेलता है तब अच्छा लगता है ना, तो खेलने का काम करते हैं वृंदावन में आके, क्रीड़ा करते हैं। जगन्नाथपुरी में 100,000 आदमी इसे एक वक्त चले जाए तो इतना भोजन हर एक हमेशा तैयार होता है, सबको मिल सकता है जगन्नाथ प्रसाद, इतना ज्यादा एक समय में तैयार होता है। तो वहां भगवान को 56 भोग लगते हैं, कितनी बार खाता रहता है वहां, खाने में कोई भगवान को जितना दो उतना खा लेते हैं, कोई कमी नहीं है वहां। तो भगवान खड़े हुए क्यों है? इसलिए कि पता नहीं किस वक्त भगत मेरा आ जाए, समस्या ले आके, उठने में मेरे को टाइम लगेगा, इतना टाइम भक्त के लिए देर नहीं करनी चाहिए, हर वक्त रेडी करे रहते भगवान, हर वक्त तैयार रहते हैं, पता नहीं किस वक्त आ जाएगा भक्त। बहुत बड़ी उनकी कृपा है। हम भक्त प्रेम से भगवान को 4 घंटे मतलब 1 बजे कहते हैं आराम कीजिए, 4 बजे उठाइए, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा तैयार रहते, पता नहीं भक्त मेरा कब मुझे याद करेगा, अचानक कभी आ जाएगा तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो कान हर वक्त भगवान ने खुले हुए रखे हैं कि कभी भी भगवान का नाम सुनने नींद में हो तब भी कोई राम राम उच्चारे तो आपके कान में चला जाए। तो प्रवेश का कर्ण रंध्रेण, कर्ण के सुराखों के द्वारा भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। और कैसे प्रवेश करते हैं अंदर, क्या भाव से प्रवेश करते हैं? स्वानाम सरोरहम, जैसा जैसा जिसका भाव है ऐसे हृदय कमल के ऊपर प्रकट होते हैं। भाव का यहां ये अर्थ है कोई भगवान को सखा भाव से करता है, कोई दास्य भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से करता है, मधुर्य भाव से, जिस भाव से भगवान का हम चिंतन स्मरण करते हैं और अभ्यास करते हैं उसी भाव में हृदय में आकर प्रकट होते हैं। तो प्रकट होते हैं भगवान हृदय में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आरती करनी पड़ेगी, उनकी अगरबत्ती घुमानी पड़ेगी कि उनको भोग लगाना पड़ेगा? हाँ नहीं, अंदर आते हैं भगवान और कहते हैं हृदय में अभी मुझे बुलाया है, मैं बैठूंगा। तो देखते हैं हृदय में तो बहुत कचरा पड़ा है, कहाँ बैठूं, जगह ही नहीं है। तब भगवान क्या करते हैं, शमलम कृष्ण धुनोति शमलम कृष्ण, तब कृष्ण बैठ के सारा मैल धोते हैं। ये भागवत में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब हृदय में प्रवेश करते हैं नित्य भागवत श्रवण से तो क्या करते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण, सारे मैल बैठ के भगवान श्री कृष्ण धोते हैं। ये अजीब नहीं लगता है? सफाई कौन करता है? भगवान सफाई करते हैं, हम नहीं करते, हमसे नहीं होगी सफाई। सफाई करते तो हम कौन से जन्म में, कई जन्मों में कर लेते, कितने जन्मों से कचरा कटा किया हुए है, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपने प्रयास से अंदर के कचरे को दबाना चाहता है। वो ऐसे होता है जैसे बरसात के पानी के अंदर आप फिटकड़ी डाल दें, वो क्लोरीन डाल दें तो सारा कचरा नीचे बैठ जाता है, पानी बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है बहुत निर्मल हो गया, मैंने कचरे को साफ किया, लेकिन विश्वामित्र की तरह ध्यान में वो मैनिका नजर आती है ना, तो अंदर से कचरा फिर ऊपर उठा, जैसे पानी को हिलाओगे तो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ज्ञानी का कचरा दबा हुआ होता है अपने जबरदस्ती, और जैसे उसको थोड़ा सा बर्तन को हिलाओगे ना कचरा फिर ऊपर से ऐसे उठ, देखा है कचरा ऊपर उठता है, कचरा अंदर से कचरा निकलता नहीं है, क्योंकि निकालना काम तो आदमी का है नहीं, हम व्यक्ति अपनी हिम्मत से कचरा अंदर से नहीं निकाल सकता। कौन निकालेगा? भगवान निकालेगा। कहते आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, तीन चार पांच दिन से आपने देखा नहीं, आपके पास आया नहीं, आप उसके कमरे पे गए, कमरे का दरवाजा बंद है, अरे जाने का रास्ता नहीं है, कहां से जाए, ऊपर खिड़की खुली हुई देखी, खिड़की से कूद के अंदर गए, अंदर गए देखा, अरे तो ये बेहोश पड़ा है, बीमार है, वो सारा कचरा पड़ा है इधर, आपने आपने सारा कचरा साफ किया, पूरा कमरा साफ किया, फिर अब बैठ के उसको उठाया, उठा के उसको पानी पिलाया और उसको जगाया। ऐसे ही हमारा मित्र भगवान बहुत सुहृद सर्वभूता नाम है, जब उसके लिए हम प्रेम और श्रद्धा से उसकी कथा सुनने में रुचि लेते हैं तो कान के द्वारे वो अंदर चला जाता है, अंदर सारा कचरा साफ करके उठाता है, हमको फिर जगा देता है कि भाई अभी तैयार हो जाओ, अब दोबारा भूल मत करना, ये मैं स्लेट तुम्हारी साफ कर लेता हूँ, अब इस स्लेट साफ के साथ तो इसके ऊपर लिख दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ मत करो। तो ध्रुव महाराज की महानता ये है कि वो भगवान के पास गए, जब भगवान के पास गए तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ तो जैसे भगवान हृदय में प्रकट हुए, ये तो कल भी बात की थी कि भगवान ध्रुव के हृदय में प्रकट हुए, तो भगवान का चिंतन करने से, भगवान के नाम का उच्चारण के जप करने से भगवान प्रकट हुए तो सारा मैल साफ हो गया, मैल साफ हो गया तो भगवान की इच्छा से उन्होंने अपना। इधर एक बहुत बड़ी बात ये ध्रुव के चरित्र में समझने को मिलती है कि आप भगवान के पास किसी इच्छा से जाएं, भगवान को देखने के बाद आपकी इच्छा तो साफ हो जाएगी, लेकिन भगवान आपको वो तजर्बा जरूर कराएंगे कि ये अभ्यास कर ही लो, आप इसके लिए आए तो ना, ये अभ्यास कर ही लो, लेकिन उस वक्त वो अभ्यास आपको ऐसे कराएंगे जैसे छोटे बच्चे को आप उंगली पकड़ के आंख के पास ले जाते हैं, क्यों? गाइडेड अभ्यास, फिर गाइडेड अभ्यास है, फिर वो हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि जब उससे पहले वापस हटा देंगे। अर्जुन को भगवान युद्ध करा रहे हैं लेकिन साथ खड़े होकर करा रहे हैं, माम अनुसमर युद्ध, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अब भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध क्या करे, भगवान तो अर्जुन के सामने बैठा है, स्मरण करने के लिए कोई परेशानी थोड़ी है, वो तो स्मरण कर देख के युद्ध कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत सुलभ था ये, माम अनुसमर युद्ध, तो स्मरण क्या करना है, उसके सामने बैठा हुआ था, हमारे को अनुसमर करके अपना कर्तव्य करना, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। इसलिए 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, श्रद्धाना क्या, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति मे प्रिय, श्रद्धाना मत परमा, जो मेरा शरणागत होके और मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, श्रद्धा का मतलब क्या है, मैं सामने खड़ा हुआ नहीं हूं लेकिन फिर भी देखता है कि मैं उसके साथ हूं, ये श्रद्धा है। श्रद्धा उस चीज के ऊपर की जाती है जो सामने नहीं होती, जो दिखती नहीं है, लेकिन विश्वास निश्चय होता है कि भगवान हमारे हृदय में है, हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं, और भगवान के ये वचन है नमे भक्त प्रणश्यति, तो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो इस बात के ऊपर निश्चय होना, दृढ़ विश्वास होना, इसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा वाला भक्त अति में प्रिय है, अति में प्रिय और किसी को नहीं बोला है, बारहवें अध्याय में आखिरी वाले को अति में प्रिय को बोला है, जो श्रद्धा पूर्वक ये मेरे धर्म के अमृत को, यह धर्मामृतम इदम यथोक्तम, ये धर्म के अमृत को, धर्म का अमृत क्या है, भगवान की भक्ति, ये धर्म का अमृत है, इसको जो श्रद्धा पूर्वक मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो ये विश्वास के साथ जब भगवान के शरण में जाते हैं तो हमारे को संसार में अभ्यास भी कराता है। प्रभुपाद ने सब शिष्यों को भगवान का नाम तो जपना सिखाया, लेकिन सारा काम करने को भी तो बोला ना कि जाओ जाओ बाहर जाओ पुस्तक वितरण करके आओ, तो काम तो कर रहे हैं ना, काम करना बंद थोड़ी किया। जो जिसके अंदर जो जिसके वो कोई साइंटिस्ट था तो उसको बोला ठीक है तुम साइंस का अभ्यास करो, बंद थोड़ी किया, फिर गाइडेड हो गया। पहले इंडिपेंडेंट था, उसमें हाथ जलने की संभावना थी, गिरने की संभावना थी, कर्म के रिएक्शन की संभावना थी, लेकिन अब की कर्म के रिएक्शन संभावना क्योंकि अभी गाइडेड है, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो फिर हाथ से पकड़ के भगवान अपने साथ ले भी जाएंगे। और यही दुरु से हो रहा है कि दुरु ने भगवान का दर्शन किया, हृदय पवित्र किया, गाइडेड सारा भगवान के निर्देश में राज शासन किया, दीर्घ काल तक 36,000 साल तक राज शासन किया, और उसके बाद सब राजपाट को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद दुरु फिर अब क्योंकि भगवान अब हाथ से पकड़ के साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बुद्रु जी कहां जा रहे हैं अपना अनुभव बता रहे हैं। ये दूसरा भक्तों को भगवान ये क्यों काम कराता है, ये ताकि वो अपना अनुभव दुनिया से शेयर करें कि ऐसे करने से आखिर में, क्योंकि सारी दुनिया तो दुनिया ही चाहती है ना, भोग ही चाहती, दुनिया में सब लोग कुछ घर चाहते हैं, दुकान चाहते हैं, मकान चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि बड़ा हमारा घर बन जाए, गाड़ी हमारे पास हो, मोटर हो, हमारे पास धन हो, बैंक बैलेंस हो, हमारे मित्र हो, बंधु हो, बांधो, यही चाहता है ना दुनिया में आदमी, और क्या चाहते हैं। क्यों भाई दिनेश जी, हाँ बड़ी कोठी बन जाएगी, अरे 10-12 फैक्ट्री हो जाएगी, दुनिया के अंदर हमारा सब जगह पे राज्य हो, यही चाहेगा ना। अब ये सब कुछ ध्रुव के पास है, वो अपना अनुभव बता रहा है, सुनिए ध्रुव के पास ये सब है और उसका अनुभव क्या है, सुनिए। अब ये श्लोक ध्रुव के अनुभव का है, आइए पढ़ते हैं। आत्मा स्त्री अपत्या सुहृदः बलम रिद्धा अंतःपुरम परिविहार भूवः च रम्याः भूमण्डलम् जलधीः मेखलम् आकल्यया काला उपसृष्टम् इति सः पर्ययौ विशालम् आत्मस्त्र्यपत्यश्वहृदौ बलम् हृद्यकोशम्। अन्तःपुरं परिविहारः भुवश्च रम्याः भूमण्डलं जलधिनेखलमाकल्यय कालोपसृष्टम् इति स पर्ययो विशालम् आत्मस्त्र्यपतय सुहृदो बलम हृद्यकोशम् अन्तःपुरं परिविहार भुवश्च रम्याः भूमण्डलं जलधिमेखलं वाक्यलल्यः कालोपसृष्टम् इति स पर्ययो विशालम् एक कोई पढ़ ले एक बार। आत्मस्थर्य पत्य सुहृदो बलम हृद्यकोशम् अन्तःपुरं परिविहार भुवश्च रम्याः
भूमंडलम जलधि मेखलामा कल्यय कालोपसृष्टम इति स परयो विशालम आत्मा शरीर स्त्री स्त्रियां एक नहीं बहुत बोल रहा है बहुत क्यों ध्रुव महाराज बोल रहा है ये आदमी एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता है बहुत बदमाश है ये झूठ नहीं है सत्य है एक बार किसी शहर में एक यज्ञ करना था कहते एक पत्नी व्रतधारी 12 आदमी चाहिए यज्ञ के लिए 50 लाख की आबादी के शहर में से 10 आदमी निकलना मुश्किल हो गए एक पत्नी व्रतधारी एक पत्नी व्रतधारी सदाचारी ग्रस्त नहीं मिला ये जो ये तो ये इसलिए ध्रुव महाराज कहते बहुत सारी स्त्रियां भी हों तो इनके पास तो राजा था ना बहुत स्त्रियां थी स्त्री है प्लूरल है बहुवचन है अपत्य बच्चे सुहृद मित्र बलम शक्ति सेना रिद्ध कोशम बहुत ज्यादा धन कोश अंतपुरम और बहुत सुंदर सुंदर महल स्त्रियों के लिए फीमेल रेजिडेंशियल क्वार्टर्स परिविहार भुव और विहार करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उद्यान च और रम्या बहुत सुंदर भूमंडलम पूरी पृथ्वी जलधि सागर से घिरी हुई मेखलम मेखलम मतलब घिरी हुई आकल्य ध्रुव महाराज उसको समझने लगे काल समय के द्वारा उपसृष्टम उपस्थित करके पैदा की गई है इति इसलिए सह ध्रुव महाराज पर ययो चले गए विशालाम टू बद्रिका आश्रम अब क्या क्या ध्रुव महाराज के पास था ये सुन लीजिए क्या था हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो ध्रुव महाराज अपने अनुभव से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया कैसा राज्य था कोई पूछे तो बोला उन्होंने अपने शरीर पत्नियों संतानों मित्रों सेना समृद्ध कोष सुख कर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया इस तरह वे काल क्रम में हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम के जंगल में चले गए ध्रुव महाराज के पास राज्य पूरी पृथ्वी का था सागरों से घिरा हुआ बहुत सुंदर क्रीड़ा स्थल भी थे स्त्रियां थी पुत्र थे धन था जो चाहिए सेना थी सब कुछ था लेकिन अनुभव क्या है ध्रुव महाराज का ये अनुभव जब आदमी भगवान के भक्तों के निर्देश में संसार में कार्य करता है ना तो ये अनुभव मिलता है और जब अकेला करता है तो इनको अपना मान लेता है लेकिन आप जितने भी पुराणों में महाराज राजाओं की कथाएं सुनेंगे इनको भगवान के इतिहास इतिहास और पुराण दो चीजें होती है इतिहास होता है उसमें सिर्फ घटनाओं का वर्णन होता है लेकिन पुराण में घटनाओं के साथ शिक्षाएं होती है ये दोनों में अंतर है महाभारत में महाभारत इतिहास है तो उसमें तो ये घटना है कि परीक्षित की रक्षा की भगवान ने लेकिन भागवत में है कि उसके उधर में जाकर उतरा के भगवान ने ऐसे चक्कर चलाया लगता है सुदर्शन चक्कर घूम रहा है तो वो परीक्षित ने देखा कुछ शिक्षा है कि भगवान के शरण में कैसे जाना तो पुराण में शिक्षाप्रद राजाओं की कथाएं बताई हुई है और सारे ही राजा समृद्ध राजा इस पृथ्वी के होने के बाद भी एक समय आने के ऊपर राज को छोड़ के वन में चले जाते तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राज में सुख नहीं है तब ना नहीं तो क्यों छोड़ के जाते भाई सभी राजा पूरी भारतवर्ष के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि सभी राजा एक समय के दशरथ महाराज ने यहां सफेद दो चार बाल देखे कि पहले कनपट्टी के बाल सफेद होते हैं
तो बोला अब राज करने की जरूरत नहीं, राम को राज देना। अरे हमारा सारा माथा सफेद होते हैं तो भी उसको काला करके काम चलाते हैं। चाराने में बुढ़ापा को भगा देते हैं। चाराने में बुढ़ापा कभी जाएगा क्या? ये बुढ़ापा आता है, ये मृत्यु का दूत है। बुढ़ापा कौन है? मृत्यु का दूत है, वारंट है। जैसे कोर्ट से वारंट आते हैं ना किसी को कि घर खाली करो, कोई आदमी किसी के घर में बहुत दिन रह जाता है और नहीं खाली करता है तो कोर्ट से वारंट आता है कि घर खाली करो। तो ये बुढ़ापा वारंट है कोर्ट का कि भाई अब तुमको घर खाली करना पड़ेगा, तुमको इतनी अवधि बाकी बची है, थोड़ी जल्दी करो, खाली करो। लेकिन हम वो क्या करते हैं, वो जो वारंट लिया था ना उसको बोलो कि मैं घर में था ही नहीं, घर में ताला दिया हुआ था, उसको बोलना घर में नहीं था वो। हाँ, ये वारंट डिलीवर ही मत करो हमको, हम काला कर देते हैं कि आया ही नहीं। अरे आया था लेकिन हमने देखा नहीं। तब फिर वो वारंट घूम के यहां बात नहीं कि थोड़ा नीचे आता है, तो पहले इधर आता है, आंख से दिखता नहीं है, आंख से वो वारंट बोलता है कि आप देखो तुम जल्दी खाली करो नहीं तो तुम्हारा पानी हुका पानी बंद कर देंगे, लाइट तुम्हारी काट देंगे। हाँ, लाइट अभी तुम्हारी कटने वाली है। तो हम जाते हैं पापा इसके अंदर से कुछ ना कुछ चश्मा एक लगाओ, इतना सारा एक पाव भार आंखों के ऊपर उठाते हैं कि अब हमारा काम चल जाएगा, हमारी लाइट नहीं कटेगी, हमने जो है दूसरा जनरेटर अपना लगा लिया है। हाँ, अपने जनरेटर लगाते हैं, फिर आंख में नया शीशा लगा देते हैं, गाड़ी चल। तब थोड़ा सा नीचे आता है और दो खाते खाते ना दांत एक थाली में गिरता है। बुढ़ापा बोल अब जल्दी करो, हाँ अब तुम्हारा सारे शरीर का संचालन होता है खाने से और तुम अब खा नहीं पाओगे भैया, तुम्हारा दांत जा रहा है। तो अब इससे जान कैसे छुड़ाएं, वो बड़े 32 नए लगा लेते चमकते हुए कि तुम हमारा पानी नहीं बंद कर सकते, तुम हमारा बिल्कुल हम अपना बोर खोद देते, रोज उठा के बाहर निकालना है फिर वापस रखना है। तो हम बड़ा प्रयास करते हैं कि कैसे भी उसको धोखा दें, लेकिन वो हमारे को छोड़ने वाला नहीं है, वो तो घर खाली करा के ही छोड़ता है। तो घर खाली ये दिया तो हमको घर इसलिए था कि इसका भगवान का भजन करें, ये स्थान हमको दिया था, ये शरीर रूपी घर इसलिए दिया था कि भगवान का भजन करें। लेकिन हम किसी को आप अच्छा घर दे दो, भाई तुम मुफ्त में जाके रहो, बहुत सुंदर तेरे को महल दे देता हूँ, आप जाके उसके अंदर जुआ करें और स्त्री गमन करें और बहुत बदमाशी करें, तो कोई आदमी तो मालिक को कहेगा ना तुमने अच्छा सा उसको काम के लिए देता, वो तो उसमें गलत काम कर रहा है, तब तो अपना आदमी भेजेगा, यार उसको बोलो खाली करो जल्दी, बेकार कर रहा है इसका काम। तो हमने इसका दुरुपयोग जो करना शुरू किया इसलिए ये सब समय समय पर नहीं, उससे पहले तो वार्निंग आती है, बीमारी आती है, जवानी में भी वार्निंग आते हैं जब इसका दुरुपयोग करते हैं ना, दुरुपयोग करते हैं बड़े बड़े वार्निंग आते हैं, खतरनाक वार्निंग आते हैं। हाँ, लेकिन हम उनको भी किसी तरीके से टाल देते हैं, ये हमको हर वक्त सावधान करने के लिए आते हैं। तो यहां गुरु महाराज के पास ये सब सुविधाएं हैं और फिर भी उन सबको कहते हैं काल कृत उपसृष्टम। अरे ये तो काल ने उत्पन्न करके मेरे को दिए, इसका अधिकार नहीं हूं मैं, इसलिए कि काल होते ही काल के समय मेरे पास आए हैं और काल बदल जाएगा तो ये सब मुझसे चली जाएंगे। तो ऐसे तो काल ने किसी को कभी राजा बनाया है, किसी को कभी फकीर बना दिया है, काल बहुत बड़ा बलवान है। और काल कौन है? कालो अस्मी लोकक्षय प्रवृद्धो, काल मैं हूं भगवान कहते हैं, मेरा काल मेरा स्वरूप है। जो सीधी उंगली से नहीं मानता है, काल की टेढ़ी उंगली से मैं सबका काम ठीक कर देता हूं। सीधा सा आगे भगवान का दर्शन करके प्रसाद खा के हरे कृष्ण जपेगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरा ये तो मेरा है बहुत सुंदर राधा राधा श्याम सुंदर राधा गिरधारी स्वरूप मेरा है कि ऐसे आओ और बड़े आनंद से जीवन बिताओ, जब तक इस घर में रहो बेफिक्र होकर रहो, आपका हुक्का पानी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं तो फिर मेरा दूसरा स्वरूप भी जान लो, टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है मेरे को, वो काल मेरा स्वरूप है और वो सब आपसे छीन लेगा, समय आने के ऊपर कुछ भी आपका रहेगा नहीं। ये समझदार आदमी बुद्धिमान है ध्रुव कि ये सब काल लेके जाएगा, जिसने दिया है वो लेके जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी मेरे पास। काल उपदृष्टम, ये काल उपसृष्टम, उप का मतलब है ये सृष्टि काल ने थोड़ी देर के लिए की है तो उपसंहार भी कर देगा ना, उपसृष्टि की है तो उपसंहार भी होगा उसका, जो पैदा किया है उसको नाश भी कर देगा, तो नाश कर दे उससे पहले मैं छोड़ दूं तो अच्छा है ना। बुद्धिमान व्यक्ति ये है, उसको है कि कोई कमरा खाली कराए उससे पहले दूसरे अपने कमरे का बंदोबस्त करके उसको खाली कर ले, उसके अंदर बैठा रहे फिर सामान बाहर रोड पे छोड़ दे फिर कितनी परेशानी होगी, सामान किसी का रोड पे फेंकना कितना बुरा लगता है, तो रोज के सामान फेंके उससे पहले खाली करे वो बुद्धिमान है। तो ध्रुव महाराज बुद्धिमान है, वो सारा काल की सृष्टि जो उसको मिली थी भोग करने के लिए उसको नमस्कार किया, धन्यवाद बहुत हो गया, अब हम यहां से के तुम्हारे दर से बेगाने होकर नहीं निकलेंगे। ऐसे नहीं है कि यहां से हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, अभी से हम जाते हैं विशालम, कौन सा दृष्टान बद्री विशाल चले गए, बद्री बद्रीनाथ कहते हैं, बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को, बेरी का पेड़ होता है ना, जब बेर होता है तो बहुत बेरियों का वहां जंगल है तो उसको बद्री का आश्रम कहते हैं, आश्रम जिसमें बहुत बेरी के पेड़ होते हैं, तो उस बेरी के बद्री का आश्रम के अंदर ध्रुव महाराज चले गए, तो ध्रुव महाराज वहां चले गए। प्रभुपाद जी इसका भावार्थ क्या लिखते हैं हम पढ़ेंगे। तो फिर एक बार भाई इसको सुन लीजिए, इसे इसको इसके अनुवाद को एक बार थोड़ा सा हमारे पीछे कहिए ताकि आपको समझ में आ जाए ध्रुव का अनुभव क्या है। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैला और महासागरों से घिरा अपना राज्य त्याग दिया। अपना कितना बड़ा राज है, आप अपना अब राज सोच लो, उसने तो पूरी पृथ्वी का राजा था वो सब छोड़ दिया, अपना राज कितना है, एक 30x40 का प्लाट है ना, 30x40 का छोटा सा प्लाट है, वो भी आजाद नहीं है, फ्लैट है चौथे माले के अंदर, यहां एक घोंसला है जैसे पेड़ के ऊपर किसी का होता है, फ्लैट का मतलब घोंसला, अपना नहीं किसी पेड़ के ऊपर अपनी अपना तो नहीं है ना, ऊपर घोंसला बना, तो घोंसला अपना तो इतना ही तो धन है और क्या धन है। और फिर अब दूसरी चीज क्या है, उस राज्य में क्या था, अरे सबसे पहले ये शरीर और फिर पत्नियां, अपने पास एक है वो भी संभालना बड़ी समस्या है, और बहुत सारा उसका परिवार, पत्नियां और संतान और मित्र और सेना और समृद्ध कोष, सुख कर महल तथा विनोद स्थलों को, बहुत बड़े सब चीजों को माया सृष्टि जानकर मान लिया कि ये माया है, करी जाएगी, काल ने दिए काल ले लेगा, काल किसी को नहीं हमेशा रहने देता, ये काल हर एक चीज समय के साथ काल के गाल में जाती है, काल के गाल में मतलब काल का मुंह फड़ा हुआ है उसके अंदर चली जाती है, अरे हमारे को भी नित्य काल खा रहा है ना, काल सर्प रोज हमारा एक एक, अब आप दूसरे को किसी को पूछते हैं अंग्रेजी में तो क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हुए हो, आई एम 50 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 50 साल मर चुका हूं बाकी थोड़ा बाकी बचा है, तो ओल्ड पूछते, कोई पूछता है कि हाउ यंग आर यू, वो ओल्ड ही पूछते हैं ना, कितने ओल्ड हो गए हो, ओल्ड हो गए मतलब बेकार हो गए, मैं कितना तुम बेकार हो गया भाई, तो बिल्कुल बेकार हो जाओ उससे पहले भगवान का भजन कर लो। लेकिन बुद्धिमान ये है, कौन सा फूल भगवान को अर्पण करते हैं या जिससे प्रेम करते हैं उसको कौन सा फूल आप अर्पण करते हैं, सड़ा आज क्या, मैं दिल्ली में था मुझे एक मित्र कह रहा था कि ये जो फूल बिक रहे हैं पता नहीं, मुझे पूछा कहां से आए, मालूम है प्रभु जी, मैंने बोला नहीं बताओ, बोला ये सस्ते क्यों बेच रहे, बोला रात बारात में जो शादी थी ना कहीं से, तो वो बड़े पंडाल में जितने फूल सजे थे ना वो सब वहां 100 रुपये 200 रुपये में सारे के सारे उठाए, उसको धो के साफ करके मालाएं बना के 10-10 रुपये में बेच रहे, वो घिसे पिटे फूल है ना सारे, कहां जाते हैं शादियों वाले फूल, ये तो हमारे अपने फूल जाके नदी में कहीं बहा के आते हैं बड़े, वो तो सारे फूल दूसरे दिन मार्केट में आते हैं फिर जाके हम पहनाते हैं दूसरों के गले में डालते हैं, तो ऐसा घिसा पिटा फूल जो है वो किसी को दोगे कि ताजा कली से निकाल के फिर अर्पण करना चाहिए भगवान को या जिससे आप प्रेम करते हो उसको, कौन सा वाला फूल चाहिए आपको, कोई फूल अर्पण करे तो कौन सा वाला चाहिए, बाहर गार्बेज के डब्बे से निकाल के लाए वो या ताजा कली से लेके आए, कौन सा अच्छा लगेगा, ताजा वाला, तो बचपन की भक्ति भगवान को अच्छी लगती है, वो ताजे फूल की तरह होती है जिसके अंदर कोई कचरा अभी तक हुआ नहीं है, जो गली नहीं है, जो बेकार नहीं हुई है, इसलिए कौमारम आचरित, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ध्रुव महाराज वो कली से निकला हुआ फूल है जो भगवान के चरणों में अर्पण हुआ था, तो फिर तो वो शाश्वत रह गया, वो तो ऐसा शाश्वत रहा कि अब यहां जब गया है बद्री का आश्रम में तो उसका देखिए क्या होता है। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज श्री भगवान की खोज में जंगल गए थे तो उन्होंने ये अनुभव किया था कि सभी
शारीरिक सुख माया की उपजय है। निस्संदेह शुरू शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्री गुरु महाराज के कार्यों से हम ये समझ ले सकते हैं कि यदि कोई किसी भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो अंत में उसे वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त को ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति का शतांश भी पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तब भी वो उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। तो ये आखिरी वाला सेंटेंस बहुत अच्छा है। Even if one completes only a minute percentage of devotional service, अरे भाई थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति किसी भी कामना से अचानक हो भी गई तो कोई नुकसान नहीं, बहुत बड़ा लाभ है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, अल्प का मतलब बहुत थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति हो गई। जैसे आज आप में से कोई एक घंटे के लिए बैठ के भी भागवत सुन ली, आप में से अचानक आ गए थे मंदिर में, इस विचार से आ गए थे परीक्षा हो रही है जाऊं भगवान के आशीर्वाद लेके कि परीक्षा में मेरा अच्छे नंबर आ जाए, इस भाव से भी आ गए, लेकिन आके भगवान का दर्शन किया और भागवत की कथा सुन ली, तो ये जो आज का पौना घंटा है ये आपके जीवन में सारे जीवन की सफलता एक तरफ और ये पौना घंटा दूसरी तरफ, ये भारी पड़ेगा और ये आपका फल जितना देगा सारी जिंदगी की मेहनत उतना फल नहीं देगी। इसका अर्थ यह है कि एक घंटा आधा घंटा भी भगवान के भजन में साधु के संग में हरिनाम के स्मरण में जो लग जाता है वो संसार सारे के संसार के परिश्रम के फल से ज्यादा शक्तिशाली है। गौकोटि दानम गृणे चकाशी प्रयाग गंगा युतकल्पवास। अरे इतना कोई धर्मात्मा हो के जाके कोटि करोड़े गौएं दान कर दे, कहां कर दे? गौकोटि दानी गृणे चकाशी, ग्रहण के दिन पे जब दान किया जाता है और काशी में जाकर दान कर दे तो बहुत अच्छा है। गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। और कल्पवास का मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन तक बैठ के प्रयाग में वास करे, कुंभ मेला होता है ना तो एक महीना वास करते हैं तो उसको कहते कल्पवास हो गया। एक महीना कुंभ का प्रयाग में रहना कल्पवास के बराबर है, तो कल्प कुंभ में वास हो गया तो ये बहुत बड़ा तपस्या मानी जाती है। गंगा प्रयाग युत कल्पवास यज्ञेश्च स्वर्णम मेरु दानम। और बड़ा यज्ञ करे, मेरु पर्वत जितना स्वर्ण का दान दे दे तो बहुत बड़ा कार्य है। ये सब अच्छे कार्य संसार में लोग कर सकते हैं धर्मात्मा लोग, लेकिन फिर एक लाइन में कह दिया गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य। लेकिन भगवान गोविंद के नाम के सुमरण के बराबर ये सब नहीं है। तो ये सारे काम जो दुनिया में कोई धर्मार्थ भी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन भगवान के नाम के स्मरण नहीं है, वो सारे एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ, तो भगवान का नाम उन सबसे भारी पड़ता है। इसलिए बहुत सरल मार्ग चेतना महाप्रभु ने कलयुग में दिया है कि सब बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन नित्य करो, संकीर्तन यज्ञ नित्य करो। और एक ऐसा यज्ञ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया जो हर व्यक्ति कर सकता है, न पंडित को बुलाने की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न ही कुछ और करने की जरूरत है। उस जग को भगवान ने दसवें अध्याय में बोला यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूं। कुछ नहीं करना है, जीभा अपने पास आपकी है और वो जीभा को
भगवान के नाम के उच्चारण करने में लगाना है, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ है। ये भगवत गीता में भगवान ने सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ बोला है, और वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते आए बन के आए तो बोलते संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत कहती है भगवान के नाम का कीर्तन साथ करो सारे पाप नाश हो जाएंगे। युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, तो अपने घर के अंदर भगवान का माला जप करना शुरू करो, और अपने घर में भोजन लेने से पहले परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करो, 10 मिनट कीर्तन करो फिर भोजन करो। हर घर के अंदर रोज यज्ञ होना चाहिए, पुराने जमाने में कहते थे हर घर में यज्ञ होना चाहिए। तो अब यज्ञ करने का बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं, हर एक व्यक्ति अपने घर में भोजन लेने से पहले इस परिवार सारा इकट्ठा बैठे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, और हर एक व्यक्ति रोज सुबह और शाम भगवान के नाम का जप यज्ञ करे, तो आपके घर में यज्ञ हो गया। और यज्ञ जहाँ होता है सभी कहते वैसे यज्ञ सब वातावरण को पवित्र करता है, और ये यज्ञ अंदर बाहर सब पवित्र कर देगा, आपका सारा एग्जिस्टेंस पूरा वजूद आपका अस्तित्व ही पवित्र हो जाएगा, और पवित्र चीज ही भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है। तो आइए भगवान के कीर्तन और नाम के द्वारा अपने जन्म को सफल करके ऐसा बहुमूल्य मानव जन्म भगवान की सेवा में लगा के इसको सार्थक करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न? हाँ धर्मेश बोलिए। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक है, और उस उधर सिर्फ अध्याय का नाम अध्याय है, अध्याय 25 अध्याय 26 अध्याय 27 ऐसे है, कोई नाम उसके ऊपर अध्याय का नहीं है वह। लेकिन आचार्यों महात्माओं संतों ने जब उस भागवत क्या है कि एक परिपाटी है, एक शैली होती है किसी चीज को देने की, तो पूरे महाभारत में जो बहुत बहुमूल्य चीज है वो बीच में ऐसे बंद करके रखी है कि हर एक उसको देख नहीं सकता है, लेकिन उसको दिखती किसकी है? जिसको ज्ञान चक्षु है उसको दिखती है। तो महात्माओं ने उसके अंदर से भगवत गीता को विशेष रूप से निकाला कि महाभारत का सार क्या है, भगवत गीता कि सब वेदों का सार इसके अंदर भरा हुआ है। पहले ये लिखा हुआ है कि महाभारत को पंचम वेद मैंने बनाया, तो पंचम वेद करके बनाया तो इसमें है कहां वेद, देखें तो सही। तो जब महात्माओं ने उसका अवलोकन किया, अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया, तो बोला अरे सब वेदों का सार तो यहां लिखा हुआ है, तो उसको बाहर निकाला कि तो ये तो भगवान का गीत है, भगवान ने मुख से तो ये शब्द कहे। तो उसको जब निकाला तो उसको एक एक अध्याय का अंदर विशेष चीज को देखा कि इस अध्याय के अंदर सार क्या है, उस सार को फिर उन महात्माओं ने अपने अनुभव से उस अध्याय के सार को ऊपर नाम के रूप में दे दिया। तो ये प्रचलित भाषा में हर अध्याय का ऐसे नाम हो गया जो महात्माओं के द्वारा इन अध्यायों के ऊपर रचित है। तो ओरिजिनल जो महाभारत में गीता है अष्टादश अध्याय नी मम्ब, ये गीता माता के रूप में 18 अध्यायों के ऊपर जो महाभारत में उसके किसी अध्याय का नाम नहीं है, वहां तो 25, 26, 27 ऐसे लिखा हुआ है। अर्जुन विषाद योग लिखने के बजाय हमने ये लिखा कि ये सारी गीता कौन सी स्थितियों में दी गई है, तो वो स्थिति क्या है, स्थिति यही है कि अर्जुन को विषाद हो गया था, उसके अंदर ये है विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, अर्जुन को विषाद शब्द इसके अंदर आता है ना, वो अध्याय के अंदर जो एक शब्द निकाला कि ये शब्द इसमें मेन है, तो गीता दी क्यों इस स्थितियों में, सेटिंग दिस सीन मतलब ये सीनरी है, इस सीनरी में भगवत गीता की, तो वो सीनरी क्या है कि अर्जुन युद्ध न करने के लिए बड़ा दुखित हो गया, तो हमने उसका एक ब्रॉड व्यू दिया है, लेकिन उसको संक्षेप में एक शब्द में लिखा है। पहले सीन क्या था, सीन तो यही था कि युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है वो विषादग्रस्त हो गया था, तो विषाद शब्द तो लिखा है ना भगवत गीता में, हम विषाद शब्द तो पढ़ते हैं ना, तो विषाद शब्द है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई महात्मा का अनुभव अपना उसको नाम देने का है तो उससे हमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, उसके भाव को देखना है, वो दोनों का अर्थ एक ही है, कि सेटिंग द सीन का मतलब कौन सी स्थितियों में भगवद गीता दी गई। तो स्थिति यही थी कि अर्जुन युद्ध करने से ना करके बैठ गया था और बड़ा कृपा आविष्ट उसके ऊपर कृपा का आविष्ट हो गया। हाँ, कृपा आविष्टम। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पहले अध्याय का सारांश है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जो संजय बोल रहा है वो दूसरे अध्याय का सारांश है, समरी है। क्या है? तं तथा कृपयाविष्टम पूर्णाश्रु कुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। ये तो जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कभी कोई आउट होता है तो उसका बहुत क्लोज दिखाते हैं, क्या कहते हैं एक्शन रीप्ले करके, एक्शन रीप्ले करते हैं ना, तब ये बाल ऐसे जाता है चुंटी की तरह जाता हुआ दिखता है कहां गया। तो संजय एक्शन रीप्ले कराए, पहले अध्याय का एक्शन रीप्ले करता है और बहुत क्लोज देखता है। क्या कहता है? तंग तथा उसके बाद कृपया आविष्टम, अर्जुन के ऊपर कृपा का आविष्ट हो गया। कृपा शब्द इसलिए कहता है कि अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है, अब ये नहीं कह सकता है कि उसके ऊपर मोह आ गया है, वो तो कृपा ही कहेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है इतना दयालु अगर अर्जुन नहीं होता तो भगवद गीता का अधिकारी भी नहीं बनता। तो उसके ऊपर कृपा, वैसे कृपा अपने सज्जनों के ऊपर होती है, दया जिसको नहीं जानते हैं उसके ऊपर होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो अपने अजीजों को देख के, रिश्तेदारों को देखकर उसके ऊपर कृपा आ गई। कृपया आविष्टम, आविष्ट का मतलब अभी आई है, घर से कृपा लाया नहीं था, आविष्ट का मतलब आगंतुक है जो चली भी जाएगी, इसलिए हमेशा रहने वाली नहीं। कृपा तंग तथा कृपया आविष्टम, और इस कृपा का कैसे पता लगा आपको कृपा आ गई? पूर्ण अश्रु कुलेक्षणम, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए लगता है कि इसको बहुत बड़ी दया आ गई है, कृपा किसी के ऊपर आ गई है। तो बोला इसको कृपा आ गई तो फिर क्या हुआ? विषीदंतम, और उसको विषाद हो गया। कृपया भी ऊपर लिखा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो क्या है? बोला विषाद हो गया है। इस विषाद के लिए वाच मधुसूदन, तब मधुसूदन उस विषाद को हटाने के लिए बोलना शुरू किए। अब क्या कि ये जब दो शब्द बोले ना ऊपर वाले, हाँ, कृपया आविष्टम पूर्ण अश्रु कुलेक्षणम विषीदंतम, तो धृतराष्ट्र तो अंधा था लेकिन संजय को तो दो आंखें थी और दिव्य दृष्टि भी थी। संजय ने देखा महाराज युधिष्ठिर मुस्कुराए, अब अर्जुन से भय था वो तो डर गया, अब वो लड़ेगा नहीं तो मेरे बच्चे का तो निश्चित रूप से विजय हो जाएगा। ओ सूरदास बाबा धृतराष्ट्र के चेहरे के ऊपर थोड़ा मुस्कुराहट आई, क्या रे अर्जुन ही तो उनके पास है, उसके सहारे लड़ रहे, अब तो अर्जुन नहीं लड़ेगा। अब संजय ये तो नहीं कह सकता है महाराज आप क्यों खुश हो रहे हो, ऐसे होना नहीं है, ये कहना तो उचित नहीं है। तब बोला इदम वाचम वाचम मधुसूदन, मधुसूदन ने ये वाक्य कहे, फिर धर्म ओ उसकी हंसी उड़ गई। मधुसूदन ने ये वाक्य कहे, इसका मतलब है वो जो मधु राक्षस को मारने वाला है ना मधुसूदन, ये सारी कृपा उसके ऊपर आई है, विषाद है ना, इसको भी थोड़ी देर में खत्म कर दे रहा और अर्जुन लड़ाई करेगा, महाराज आप खुश मत होइए, इसका भाव ये है। तो वो सूरदास के चेहरे पे उसने ना मुस्कुराहट देखी तो उसने पीछे ये मधुसूदन शब्द कह दिया, और भी शब्द कह सकता था वहां लेकिन मधुसूदन इसलिए कहा कि ये जो मधुरूपी इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए दैत्य जो कृपा रूपी आक्रमण किया है ना विषाद, ये थोड़ी देर में मधुसूदन इदम, ये वाक्य कौन से बोल रहे और वाक्य कौन से बोले मधुसूदन ने, उधर बड़े अर्जुन को हिला के रख दिया एकदम, अर्जुन के सारे अस्तित्व को जो है शेक किया है, ये शेकिंग वाक्य, दो श्लोक शेकिंग है, अर्जुन वॉज शेक्ड कंप्लीटली। त्रेव्यम मा समगम पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर बल्यम त्यक्तो तिष्ठत पर, उठी उठो क्या तुम भी मुसीबत है, नपुंसक बन गए। ये दो वाक्य ऐसे वाक्य की कहे कि वह विषाद प्रसाद हो गया। ये प्रसाद जब होता है ना, ये प्रसाद है, तो अर्जुन का पहला अध्याय विषाद योग है तो दूसरा अध्याय प्रसाद योग है। असल में वो भगवान का जब विषाद होता है तो प्रसाद मिलता है, जब दुखी होकर भगवान के चरणों में जाते हैं तो भगवान की कृपा का प्रसाद मिलता है। तो दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ये प्रसाद है भगवान का। हरे कृष्ण, ठीक है धर्मेश, और आप प्रसाद योग करिए, आप प्रसाद योग की तरफ चलिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।